SBS हिंदी सेवा के सभी सुनने वालों को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि बिलों को वापस लिए जाने की घोषणा पर जीत की खुशी मनाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने फिलहाल अपनी अन्य मांगों के संबंध में आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। रविवार को हुई अपनी बैठक में मोर्चे ने निर्णय लिया कि किसान अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जारी रखेंगे और अपनी मांगों के विषय में प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र लिखेंगे। 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा दोबारा बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करेगा। मोर्चे की कोर कमेटी के सदस्य श्री बलबीर सिंह राजेवाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया।
जो तीन कानून रिपील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है उस पे चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद कुछ फैसले हुए। एक तो ये कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। और ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगे बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। MSP की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें। और जो बिजली शोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और पराली वाला कानून जो है उसके बारे में भी लिखा जाएगा। लखमीरपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा। और जो मंत्री जी इन्वॉल्व है उस केस में उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। आंदोलन के दौरान सभी राज्यों के किसानों के खिलाफ जितने केस दर्ज किए गए हैं वो वापस करवाने के लिए लिखा जाएगा।
दिल्ली की सीमाओं पर लगभग एक साल से डटे होने के बाद किसान प्रधानमंत्री के इस अचानक लिए गए यू टर्न की एक बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी की अगले साल के शुरू में हो रहे विधानसभा चुनावों को जीतने की रणनीति मान रहे हैं। अग्रणी किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा पर शक जाहिर करते हुए कहा,
मीठी भाषा बोलने बड़ा ज्यादा खतरनाक आदमी हो, देश के प्रधानमंत्री को इतनी मीठी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। क्यों मांगे माफी? माफी उन किसानों से मांग रहे क्या जो शहीद हो गए? उनसे मांग लो माफी, ठीक है। देश का प्रधानमंत्री इतना झुकना भी नहीं चाहिए। कमजोरी दिखती है और जालसाजी दिखती है उसमें, तो कोई ना कोई प्लान है।
किसानों के इस संशय को कई भाजपा नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों से बल मिलता है। मिसाल के तौर पर राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र का बयान जिसमें उन्होंने कृषि बिलों के वापस लिए जाने की बात कही।
अंत में सरकार को लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानून इस संबंध में बनाने की आवश्यकता पड़े किया जाएगा, लेकिन इस समय किसानों संबंधित कानून जो किसान लगातार इसके वापस लेने की मांग कर रहे हैं वापस ले लेना चाहिए और वैशाली को वापस किया है।
किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख किसानों की जीप द्वारा कुचलने के आरोपी बेटे के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी को बर्खास्त करने की मांग की है।
महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ, वे असहनीय पीड़ा में है। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है।
उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव जीतने की कोशिश में लगी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें उन्हीं के सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख बढ़ा दी हैं। उन्होंने आंदोलन के दौरान मारे गए 700 किसानों के हरेक परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी बिल लाने और केंद्रीय राज्य मंत्री के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। मुंबई हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान के ऊपर लगाए सभी आरोपों को निराधार बताया है। शनिवार को आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को बेल देते हुए अदालत ने कहा कि उसे इन तीनों अभियुक्तों के खिलाफ ड्रग्स से संबंधित किसी भी अपराध का कोई साक्ष्य नहीं मिला है और ना ही उनकी व्हाट्सएप चैट्स में कुछ भी अवांछनीय है। अदालत के इस फैसले के बाद एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने पूरे केस को फर्जीवाड़ा ठहराते हुए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर करारा हमला बोला।
हाई कोर्ट के आदेश से ये स्पष्ट हो गया कि आर्यन खान के मामले में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा रचा गया। ये पूरी तरह से किडनैपिंग और उगाही का मामला था। केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा कि कोई अधिकारी फर्जीवाड़ा रचकर पूरी तरह से लोगों को बदनाम कर रहा है, उगाही कर रहा है, ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करे, उसे बचाने का काम ना करे।
समाचार एजेंसियों के अनुसार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करने और श्री मलिक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है। राजस्थान कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह को मंत्रिमंडल विस्तार से दूर करने की कोशिश में सफल होती दिख रही है। केंद्रीय नेतृत्व से कई दौर की बातचीत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों से इस्तीफा लेकर रविवार को नए मंत्रिमंडल में श्री सचिन पायलट के खेमे के 5 विधायकों को जगह दी है। इस फेरबदल के बाद राजस्थान के दोनों शीर्ष नेताओं में शक्ति संतुलन के बाद सुलह होती देखी गई। श्री पायलट का यह बयान इसी ओर इशारा करता है।
इस नई कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इसी प्रकार हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत जरूरी और आवश्यक कदम था जिसको कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है।
हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की दिशा में कदम रखते हुए भारतीय जल सेना ने अपना नवनिर्मित अत्याधुनिक विध्वंसक पोत INS विशाखापट्टनम मुंबई के मझगांव डॉक में कमीशन किया। 76% स्वदेशी उपकरणों से बना यह मारक पोत अत्याधुनिक ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से लैस है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जलसेना के सैनिकों को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा।
1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे अनक्लॉस कहकर पुकारते हैं, इसमें नेशंस के टेरिटोरियल वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और गुड ऑर्डर एट सी के प्रिंसिपल को प्रतिपादित किया गया है। पर इन प्रिंसिपल्स की मनमानी व्याख्या एक रूल बेस्ड मैरिटाइम ऑर्डर की राह में बाधा उत्पन्न करती है। यानी कुछ नेशंस ऐसे हैं, नेशंस क्या हैं, मैं उन्हें इर्रेस्पॉन्सिबल नेशन कहना चाहूंगा, जो अपने नैरो पार्टीजन इंटरेस्ट के लिए हेगेमोनिक टेंडेंसी से इन इंटरनेशनल लॉज की आए दिन नई नई अनुचित व्याख्याएं करते रहते हैं। हम एक रूल बेस्ड नेविगेशन की फ्रीडम, फ्री ट्रेड और यूनिवर्सल वैल्यूज वाले इंडो पैसिफिक की कल्पना करते हैं, जिसमें सभी भागीदार देशों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें।
तमिलनाडु के साथ साथ असमय तूफानी बारिश केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी कहर बरपा रही है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में 12 से 14 सेंटीमीटर रिकॉर्ड बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। पवित्र धार्मिक स्थलों तिरुपति और केरल के सबरीमाला में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तीर्थ यात्राएं भी बंद हैं। आंध्र प्रदेश में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 17 लोग लापता हैं। कई दक्षिणी इलाकों में यातायात के मार्ग कट गए हैं और वहां वायुसेना और NDRF की टीमों से मदद ली जा रही है। और आइए अब बारी है खेल समाचारों की। कोलकाता में खेले गए तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 73 रनों के बड़े अंतर से हराकर सीरीज़ को 3-0 से जीत लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 184 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। कप्तान की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद रोहित शर्मा ने एक बार फिर 31 गेंदों पर 56 रनों की धुआंधार पारी खेलकर भारत को एक अच्छी शुरुआत दी। नए सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने 29 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने दबाव में खेलते हुए पारी की शुरुआत की। अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मात्र 9 रन देकर 3 विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड की ओर से केवल मार्टिन गुप्टिल ही भारत की सदी हुई गेंदबाजी का मुकाबला कर पाए। उन्होंने 36 गेंदों में 51 रनों का योगदान दिया। न्यूजीलैंड की टीम 17.2 ओवर में मात्र 111 रन बना पाई। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने सीरीज जीतने पर खुशी जाहिर की, पर साथ ही खेल भावना का परिचय देते हुए न्यूजीलैंड की मुश्किलों का आकलन भी किया।
Yeah, it feels good. Nice to start well. But obviously, we are also quite realistic. And, you know, to be honest, it wasn't obviously. You know, I think we got to keep our feet on the ground as well a little bit and be a bit realistic about this win. Not easy for New Zealand to play a World Cup final and then to turn up 3 days later or play 3 games in 6 days was never going to be easy on them.
इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा की ओर से आप सबको मनन कुमार का पुनः नमस्कार।